लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि फिलहाल 42 देश सुरक्षित और असरदार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें से 36 उच्च आय और 6 मध्य आय वाले देश हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि निम्न और अधिकांश मध्य आय वाले देशों को अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे कोवैक्स पहल के तहत सुलझाया जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस कोवैक्स के तहत सुरक्षित और असरदार वैक्सीन की 2 अरब खुराकों का इंतजाम किया गया है और जैसे ही वे तैयार होंगी उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि न्यायोचित टीकाकरण से लोगों की जिंदगियां बचाने और स्वास्थ्य प्रणालियों को स्थायित्व प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने चिंता जताई है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए उभरता वैक्सीन राष्ट्रवाद दुनिया को चोट पहुंचा रहा है। कोविड-19 पर पूर्ण रूप से काबू पाने के लिए यह जरूरी है कि कोविड-19 के असरदार और सुरक्षित टीकों का न्यायसंगत वितरण हो। उन्होंने आग्रह किया है कि जिन देशों के पास आवश्यकता से अधिक वैक्सीन की खुराकें हैं, उन्हें इन खुराकों को दान कर देना चाहिए। कुछ और ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को बताया कि पिछले साल अप्रैल में वैक्सीन अलायंस गैवी के साथ मिलकर कोवैक्स पहल को शुरू किया गया था। इस पहल के तहत सुरक्षित और असरदार वैक्सीन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया जाना था। अब तक 2 अरब खुराकों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति भी बन चुकी है, लेकिन उन्होंने चिंता जताई है कि जहां धनी देशों में टीकाकरण आगे बढ़ रहा है, वहीं निम्न और अधिकांश मध्य आय वाले देशों को वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जो कि एक बड़ी समस्या है जिसे सुलझाया जाना होगा। बताया गया है कि शुरुआत में ही धनी देशों ने अनेक प्रकार के टीकों की अधिकांश आपूर्ति अपने लिए सुनिश्चित कर ली। इसके अलावा उच्च और मध्य आय वाले देश कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी कर रहे हैं, वो देश भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैक्सीन अलायंस गैवी की कोवैक्स मुहिम का हिस्सा हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि निर्धनतम और सबसे वंचित देशों में ज्यादा जोखिम झेल रहे लोगों को वैक्सीन फिलहाल नहीं मिल पाएगी।
वैक्सीन नेशनलिज्म hurts us all and is self-defeating. But on the flip side, vaccinating equitably saves lives.
महानिदेशक घेब्रेयेसस चिंता जता रहे थे कि उभरता वैक्सीन राष्ट्रवाद दुनिया को चोट पहुंचा रहा है और असल में खुद के लिए नुकसान का सबब है। लेकिन अगर न्यायसंगत ढंग से टीकाकरण होता है तो जिंदगियों को बचाने और स्वास्थ्य प्रणालियों में स्थायित्व लाने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक आर्थिक पुनर्बहाली का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के अवसरों के सृजन में भी तेजी आएगी। जिन देशों ने जरूरत से ज्यादा टीकों को हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनसे गैर जरूरी टीकों को कोवैक्स पहल में दान करने और द्विपक्षीय समझौते को रोकने की अपील भी की गई है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी देश असाधारण नहीं है, इसलिए कतार को तोड़कर अपनी आबादी में टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे समय में जब अन्य देशों के पास वैक्सीन की आपूर्ति ना हो।
दुनिया भर में लोगों ने वैश्विक चुनौतियों का असरदार ढंग से मुकाबला करने के लिए बहुपक्षवाद में अपना भरोसा व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2020 के दौरान साल भर तक चले सर्वेक्षणों और संवादों में यह बात प्रमुखता से आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने जनवरी 2020 में यूएन 75 पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आशाओं और आशंकाओं को समझना था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में उनकी आकांक्षाओं और विचारों को सुना जाना था। सर्वेक्षण और संवादों के जरिए 175 देशों से 15 लाख लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने जनवरी 2020 में UN 75 पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों की आशाओं व आशंकाओं को समझना था। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने नतीजों का उल्लेख करते हुए बताया कि UN 75 वैश्विक चर्चा दर्शाती है कि 97% प्रतिभागियों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया है। ये बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र के मिशन के लिए एक बेहद मजबूत संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करना हम पर यानी सदस्य देशों और यूएन सचिवालय पर निर्भर है, जिनके लिए हम सेवारत हैं। UN 75 संवादों और सर्वेक्षणों के साथ साथ विश्व आबादी की राय जानने के लिए नवाचारी तरीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पारंपरिक व सोशल मीडिया सहित अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा वास्तविकता को जानने के लिए 2 स्वतंत्र सर्वेक्षण भी कराए गए। सर्वेक्षण बताते हैं कि विभिन्न पीढ़ियों, क्षेत्रों, आय समूहों, शिक्षा स्तरों में भविष्य के प्रति आशंकाओं व आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में उम्मीदों में एकता दिखाई।
संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस पर नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के मानव अधिकारों का पूर्ण सम्मान करने वाली वैश्विक स्पर्शनीय संचार प्रणाली की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। 4 जनवरी दरअसल लुईस ब्रेल का जन्मदिवस है, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों और दृष्टि विकलांग लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की स्पर्शनीय प्रणाली ब्रेल लिपि इजाद की थी। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौर।
कोरोना वायरस महामारी और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले तालाबंदी जैसे प्रभावों ने नेत्र विकारों वाले व्यक्तियों की चुनौतियों को बदतर बना दिया है, जिससे वो और ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 अरब से ज्यादा लोगों को नजर की कमजोरियों और विकलांगता की स्थिति के साथ जीना पड़ रहा है। महामारी ने आवश्यक जानकारी व सूचनाएं सुलभ साधनों में उपलब्ध करने की महत्ता को भी उजागर किया है। इनमें ब्रेल लिपि और सुनने वाले संसाधन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने समावेशी जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर अनेक गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मलावी में COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और उसकी रोकथाम के उपायों के बारे में 4,000 से ज्यादा ब्रेल लिपि सामग्रियां उपलब्ध कराई। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को COVID-19 का मुकाबला करने संबंधी दिशा निर्देश अनेक भाषाओं और सुलभ रूपों में उपलब्ध कराए, जिनमें ब्रेल लिपि भी शामिल थी।
भारत, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान की तैयारियां चल रही हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इंडोनेशिया में टीकाकरण 13 जनवरी बुधवार को शुरू हो गया, जबकि भारत में 16 जनवरी से शुरू होने वाले अभियान की विशाल तैयारियां चल रही हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य देशों में आगामी दिनों में वैक्सीन दिए जाने की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सुरक्षित और असरदार बेहद मददगार साबित हो रही है, बशर्ते कि वे दुनिया भर में उपलब्ध हों और सभी निर्बल समुदायों की उन तक पहुँच हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों के साथ COVID-19 के लिए वैक्सीन की योजना को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहा है। इस तहत एक राष्ट्रीय तैनाती और टीकाकरण योजना को तैयार किया जा रहा है, जहां वैक्सीन वितरण की योजना और उसके प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण में जुटे कर्मियों की ट्रेनिंग, वैक्सीन वितरण की योजना और तैयारी संबंधी गतिविधियों की निगरानियों का भी प्रबंध किया गया है। और इसी के साथ हम UN रेडियो से लिए गए सामयिक लोकोपकारी चर्चा को विराम देते हैं। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रेम का दीप जला दे मेरे मन में, शांति का दूत बना दे आके दिल में,
प्रेम का दीप जला दे मेरे मन में, शांति का दूत बना दे आके दिल में,
प्रेम का सागर तू शांति का राजा भी तू, दीप जला दे मेरे मन में।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। ब्राजील में रियो दे जनेरियो के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल यूसेबियो ऑस्कर शीत के निधन पर एक शोक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने दिवंगत आत्मा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रियो दे जनेरियो के वर्तमान महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ओरानी टेम्पेस्टा को प्रेषित एक तार संदेश में संत पापा ने लिखा कि कार्डिनल शीत के निधन की खबर सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ है। उन्होंने लिखा कि शोकाकुल लोगों और दिवंगत आत्मा को धर्मोत्साही प्रेरितिक नेता मानने वाले विश्वासियों के प्रति वे हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं। संदेश में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं कि दिवंगत कार्डिनल शीत का धर्माधिक्षी आदर्श था कि ईश्वर भले हैं जो हमें कलीसिया के प्रति ईश्वर की भलाई की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, साओ होसे दोस कैंपस के प्रथम धर्माध्यक्ष प्रिय कार्डिनल यूसेबियो की स्मृति वास्तव में सांत्वना देने वाली है, जिन्होंने समर्पण और तत्परता के साथ ईश प्रजा की सेवा की। फ्लोरियानोपोलिस तथा रियो द जनेरियो की सान सेबास्टियन महाधर्माधीक्षीय पीठों में कार्डिनल शीत के कार्यों की भी संत पापा ने प्रशंसा की तथा ब्राजील की कलीसिया को इतने उदार प्रेरितिक नेता प्रदान करने के लिए ईश्वर के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। संत पापा ने लिखा, अनंत शांति और सुख में उनके स्वागत हेतु मैं उत्कट प्रार्थना करता तथा पुनरुत्थान की आशा में उन सभी लोगों को सांत्वना देता हूं जो अपने प्रिय मेषपाल के चले जाने पर शोक मना रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद कार्डिनल शीत को निमोनिया की संभावना के साथ 12 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कार्डिनल यूसेबियो का जन्म ब्राजील के लुसेर्ना में 8 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ब्राजील तथा रोम में ईश शास्त्र और दर्शन का अध्ययन करने के उपरांत 3 जुलाई सन 1960 ईस्वी को आप रोम में ही पुरोहित अभिषिक्त किए गए थे, जहां आपने ईश शास्त्र की पढ़ाई जारी रखी तथा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। सन 1991 में आप फ्लोरियानो पुलिस महाधर्म प्रांत तथा 2001 में रियो दे जनेरियो महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 21 अक्टूबर 2003 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने आपको कलीसिया के राजकुमार के शीर्षक से सम्मानित कर कार्डिनल का पद प्रदान किया था। ब्राजील में विभिन्न पदों पर सेवाएं अर्पित करने के साथ साथ कार्डिनल यूसेबियो लातिनी अमरीका के लिए परम धर्म पीठीय आयोग के भी परामर्शक रहे थे। साथ ही पूर्व संत पापा बेनेडिक्ट सोल्वे को संत पापा नियुक्त किए जाने के लिए एकत्र कार्डिनल मंडल में भी आप शामिल थे। वैटिकन के राजनयिक फादर यानूस उर्बानसिक ने यूरोप में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता पर गहन चिंता व्यक्त की है तथा आशा व्यक्त की है कि इस समस्या पर नेताओं का ध्यान केंद्रित होगा। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संबंधी संगठन ओशे में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक फादर यानूस उर्बानसिक ने गुरुवार 14 जनवरी को वियना में संपन्न संगठन की स्थायी समिति की बैठक में ख्रिस्तियों, यहूदियों, मुसलमानों और अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और भेदभाव को आवाज प्रदान की। संगठन के वर्तमान स्वीडिश अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे असहिष्णुता और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करें ताकि पूर्वाग्रहों के बिना लक्षित समुदायों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके। ओशे संगठन से फादर उर्बानसिक ने आग्रह किया कि संगठन केवल कुछ गिने चुने मानवाधिकारों को ही वरीयता देने से सावधान रहे। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि संगठन के अध्यक्षता का ध्यान मानवाधिकारों, प्रजातंत्रवाद और लैंगिक समानता पर अधिक रहा है, जबकि परम धर्म पीठ का आग्रह है कि सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त समस्त मानवाधिकारों की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि मानवाधिकारों का उपयोग कभी भी राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओशे क्षेत्रों में शांति की प्राथमिकता को हर हालत में जारी रखा जाना चाहिए। वैटिकन स्थित ख्रिस्तियों के बीच एकता को प्रोत्साहित करने हेतु गठित परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट कॉक ने बेलारूस के ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त किया है। बेलारूस के पूर्व ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष फिलारेत का निधन मंगलवार को मिन्स्क के एक अस्पताल में हो गया था। वे 85 वर्ष के थे तथा विगत एक माह से कोविड-19 महामारी से ग्रस्त थे। कार्डिनल रॉबर्ट कॉक ने बेलारूस की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के वर्तमान धर्माधिपति प्राधिधर्माध्यक्ष बेन्यामिन के नाम एक पत्र प्रेषित कर दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की तथा बेलारूस की संपूर्ण कलीसिया के प्रति अपने प्रार्थना में सामीप्य का आश्वासन दिया। रॉबर्ट कॉक ने कहा, प्राधिधर्माध्यक्ष फिलारेत की कई वर्षों की वफादार सेवा के लिए मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिस दौरान उन्होंने हम सभी के समक्ष विश्वास का एक दैदीप्यमान उदाहरण प्रस्तुत किया है। कार्डिनल कॉक ने बेलारूस में नवीन गिरजाघरों और मठों के नवीनीकरण और निर्माण तथा बेलारूस की कलीसिया में धर्म शिक्षा प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास के लिए प्राधिधर्माध्यक्ष फिलारेत के उल्लेखनीय योगदान की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्मरण दिलाया कि प्राधिधर्माध्यक्ष फिलारेत एक अथक प्रेरित कार्यकर्ता तथा शांति निर्माता थे, जिन्होंने अन्य धर्मों और विशेष रूप से कैथोलिक धर्म के प्रतिनिधियों के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखे। दिव्य शब्द धर्म समाज के पुरोहित जर्मन मिशनरी तथा एशियाई कलीसिया में संप्रेषण और संचार माध्यम निकाय के अग्रणी फादर फ्रांस योसेफ आइलर्स का निधन 13 जनवरी को फिलीपींस में हो गया। वे 89 वर्ष के थे। फादर आइलर्स के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिव्य शब्द धर्म समाजी पुरोहित और इंदौर के धर्माध्यक्ष शाको थोटू मारिकल ने कहा कि फादर आइलर्स एक बहुत ही ज्ञानी संप्रेषक थे। उन्होंने कहा, हमने एक महान मित्र, प्रेरक, अनुप्राणकर्ता, शिक्षक और नेता को खो दिया है, जिन्होंने पुरोहित रहते हुए अपना अधिकांश समय कलीसिया में एक मजबूत मीडिया को विकसित करने में बिताया है। दिव्य शब्द धर्म समाज के मीडिया विशेषज्ञ फादर क्लारेंस श्राम्बिकल ने बताया कि फादर आइलर्स यूरोप और एशिया में कई संप्रेषण माध्यम योजनाओं को स्थापित करने के लिए याद किए जाएंगे। ऊका न्यूज से उन्होंने कहा कि वे प्रथम ख्रिस्तीय मिशनरी थे जिन्होंने अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और संचार माध्यम में डॉक्टरेट की उपाधि पाई थी। जर्मनी के आखन शहर में कैथोलिक मीडिया समिति की स्थापना का श्रेय भी फादर आइलर्स को ही जाता है। फादर आइलर्स वैटिकन स्थित सामाजिक संप्रेषण माध्यम संबंधी परम धर्म पीठ समिति के सदस्य भी थे। कई वर्षों तक आप फिलीपींस में रेडियो वेरिटास के महानिर्देशक तथा धर्म और संप्रेषण माध्यम संबंधी अनुसंधान केंद्र के निर्देशक भी रहे थे। इसी बीच एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ FABC ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर कहा कि फादर आइलर्स ने एक महान संप्रेषक, लेखक और शिक्षक रूप में कलीसिया के संप्रेषण माध्यम प्रेरिताई को समृद्ध योगदान प्रदान किया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।